ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिण्यं श्रीचैतन्येश्वरम्। आज हम श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय स्कंद 7 अध्याय 10 श्लोक नंबर 43-44 ये हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, मेरे पीछे आप दोहराइए। दोनों श्लोक इकट्ठा हैं, फिर हम इकट्ठा आप ठीक है बोल सकते हैं। प्रह्लादस्यानुचरितम् महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च यथाध्यं चास्य वै हरे सर्गस्तिष्यप्ययेशस्य गुणकर्मानुवर्णनम् परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान् प्रह्लादस्यानुचरितम् महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च यथाध्यं चास्य वै हरे सर्गस्तिष्यप्ययेशस्य गुणकर्मानुवर्णनम् परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान् प्रह्लादस्यानुचरितम् महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च यथाध्यं चास्य वै हरे सर्गस्तिप्यस्य एषस्य गुणकर्मानुवर्णनम् परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रह्लादस्य, प्रह्लाद महाराज की अनुचरितम विशेषताएं पढ़कर या कार्यकलापों का वर्णन करके समझी गई। महाभागवतस्य महान भक्त की च भी भक्ति ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति ज्ञानम आध्यात्म का पूर्ण ज्ञान ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान विरक्ति ही भौतिक संसार से वैराग्य च भी यथाथ्यम उन्हें सही सही समझने के लिए च तथा अस्य इसका वै निस्संदेह हरे सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में सर्ग सूजन स्थिति पालन अप्याय तथा संहार का ईशस्य स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुण दिव्य गुण तथा ऐश्वर्य कर्म तथा कार्यकलापों का अनुवर्णनम परंपरा के भीतर वर्णन। अनु का अर्थ है पश्चात। अधिकारी व्यक्ति पूर्व आचार्यों का पालन करते हैं, वे कोई नई चीज नहीं पढ़ते नहीं गढ़ते। पर अवरेशम देवता तथा असुर नामक विभिन्न प्रकार के जीवों का स्थानानाम विभिन्न लोकों या रहने के स्थानों को कालेना समय आने पर व्यत्यय हर वस्तु का संहार महान यद्यपि महान। यह कथा महा
आगे
यह कथा महाभागवत मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, बहुत बड़ा है। यह कथा महाभागवत प्रह्लाद महाराज के गुणों उनकी दृढ़ भक्ति उनके परिपूर्ण ज्ञान तथा भौतिक कल्मश से पूर्ण विरक्ति का बखाना करती है। यह सृजन पालन तथा संसार संहार के कारण स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भी वर्णन करती है। प्रह्लाद महाराज ने अपनी स्तुतियों में भगवान के दिव्य गुणों के साथ ही यह भी बतलाया कि किस तरह देवताओं तथा असुरों के आवास भगवान के निर्देश मात्र से ध्वंस हो जाते हैं, चाहे वे भौतिक ऐश्वर्य से कितना भी भरे पूरे क्यों न हो। मैं तात्पर्य पढ़ता हूं। श्रीमद् भागवत विभिन्न भक्तों के भगवान की सेवा से संबंधित चरित्रों के वर्णन से ओतप्रोत है। यह वैदिक वाङ्मय भागवत कहलाता है, क्योंकि इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का वर्णन है। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से मनुष्य कृष्ण के विज्ञान, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की प्रकृति तथा जीवन लक्ष्य को पूर्ण रूपेण समझ सकते हैं। श्रीमद्भागवतम अमलम पुराणम। श्रीमद्भागवत निष्कलंक वैदिक वाङ्मय है, जैसा कि हम श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में ही बतला चुके हैं। अतः श्रीमद्भागवतम को समझने मात्र से ही हम भक्तों के कार्यकलापों, असुरों के कार्यों, स्थिति तथा स्थायी तथा नश्वर धामों के विज्ञान को समझ सकते हैं। श्रीमद्भागवत के माध्यम से हर बात भली भांति ज्ञात हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आज हम श्रीमद् भागवतम का ये महत्वपूर्ण श्लोक का चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, फिर भी मैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो दिया गया है और कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन के लिए मैं प्रयास करूंगा, अगर आप सब लोग मुझे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्लीज, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का महत्व को ये तीन चार श्लोक बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा है। इसमें प्रभुपाद जी क्लियरली बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं ये श्रीमद् भागवतम एक्चुअली है क्या। अगर कोई पूछते हैं अब भागवतम है क्या, थोड़ा हमें शॉर्ट में बता दीजिए, हमें हमारे पास समय नहीं है। तो प्रभुपाद जी इसका डेफिनेशन, एक्चुअली भागवतम क्या है,
बता रहे हैं भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में जो बताता है वही भागवतम है। अगर कोई भागवतम कथा में बैठे हैं और भगवान के बारे में नहीं, भगवान के भक्ति के बारे में नहीं और कुछ बता रहे हैं तो वो एक्चुअली भागवतम के संबंधित नहीं है। तो वैसे कथाएं बहुत सारा चलते हैं इधर उधर बाहर, वृंदावन के बाहर, इस्कान के बाहर बहुत सारे ऐसे कथाओं में बैठ के मनोरंजन, वो एक्चुअली अपना मन को ये सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपना इंद्रिय तृप्ति के भाग हो जाता है। अगर उसमें जो भी जोक है या जो भी कथाएं सुनाते हैं अगर उससे हम आकर्षित होके असल चीज जो भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में जो सुनने के लिए भागवतम है उसको छोड़ के दूसरा ऐसे चीजों पर हमारा ध्यान चले जाता है तो हमारा लक्ष्य एक्चुअली भागवतम का सुनने का वो हम थोड़ा थोड़ा दूर चले जाते हैं। इसलिए ये हम सदा याद रखना है कि भागवतम मतलब भगवान कृष्ण के, भगवान के बारे में और उनके भक्तों के बारे में बताने वाला ही भागवतम है। और भागवतम का जो विशिष्ट स्थान है, व्यासदेव जी 17 पुराण लिखने के बाद आखिरी में श्रीमद् भागवतम लिखते हैं। हर एक पुराण में क्या क्या अलग अलग दूसरे पुराण हैं और उसका श्लोक है उसमें वर्णन होता है और श्रीमद् भागवतम में श्लोक नंबर अध्याय स्कंद 12 13 अध्याय श्लोक नंबर 4 से 9 तक ये 18 पुराणों का वर्णन है और उसमें कितने श्लोक है ये भी बहुत स्पष्ट रूप से इस 12 स्कंद 13 अध्याय श्लोक नंबर 4 से 9 तक दिया गया है। उसका शॉर्ट में हम इधर बता रहे हैं। ब्रह्म पुराण 10,000 श्लोक, पद्म पुराण 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण 23,000, शिव पुराण 24,000, श्रीमद् भागवतम 18,000, नारद पुराण 25,000, मार्कंडेय पुराण 9,000, अग्नि पुराण 15,400, भविष्य पुराण 14,500, ब्रह्मा वैवर्त पुराण 18,000, लिंग पुराण 11,000, वराह पुराण 24,000, स्कंद पुराण 81,100, वामन पुराण 10,000, कूर्म पुराण 17,000, मत्स्य पुराण 14,000, गरुड़ पुराण 19,000, ब्रह्मांड पुराण 12,000। ऐसे ये पूरा पुराणों का श्लोकों को अगर हम गिनते हैं तो पूरा मिलके 4,00,000 श्लोक बनता है। तो श्रील जीव गोस्वामी ये 12, 13, 4, 5 के 4, 9 के नीचे उनका एक्सट्रैक्ट जीव गोस्वामी जी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जीव गोस्वामी जी बताते हैं असल में महाभारत 1,00,000 का और रामायण एक्चुअली बहुत बड़ा था, उसको नारद मुनि थोड़ा शॉर्ट करके 25,000 श्लोकों में बताए हैं। ऐसा करके हमारा जो भी 18 पुराण और 2 एपिक्स मिला के हमारे ग्रंथों का श्लोक बन जाता है 5,25,000। तो ये श्लोकों का एक्चुअली हम पढ़ने का तो बहुत मुश्किल है और श्रीमद् भागवतम में ये पूरा का सार एक्चुअली बताया गया है। तो हम श्रीमद् भागवतम को ये दृष्टि से देखते हैं और इसको अच्छा सा पढ़ के हम ज्ञान का हम जीर्ण करने का और भगवान के भक्ति को आगे बढ़ाने का हम मन में प्रयास करते हैं। और इसमें बहुत अलग अलग तरीका का जो अचिंत्य तत्व है उसको हम समझने का, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे स्कंद 10 अध्याय 88 वृकासुर का वर्णन आता है। वृकासुर एक असुर था, वो एक बार उनके मन में ऐसे आया, ये तीन देवता देवों में कौन सा देव है जो शीघ्र ही हमें वर दे देंगे। तो वो सोच रहे थे किससे पूछना है, सडनली नारद मुनि दिखाई पड़ते हैं और नारद मुनि से पूछते हैं, हे नारद मुनि बता दीजिए मुझे कौन सा देव से मैं शीघ्र वर को प्राप्त कर सकता हूँ। तो नारद मुनि बताते हैं आपका आपको शीघ्र अल्प मात्र सेवा से तृप्त होने वाले शिव जी है, आप शिव जी का तपस्या कीजिए, शिव जी को आप प्रसन्न कर बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, जो भी ये जगत का जो भी आपका इच्छाएं हैं वो पूर्ण कर देंगे। तो शिव जी का वो ऐसे प्रसन्न करना चाहता था कि अपना शरीर का मांस निकालता था और हवन में डालता था, हाथ काटा, हाथ में से मांस काटा, मांस काट के हवन में डाला और देखते हैं शिवजी प्रसन्न हो रहे कि नहीं। हे शिवजी प्रसन्न हो जाओ, ओम नमः शिवाय, शिवजी प्रसन्न हो जाओ, जितना भी वो सहन करता है हवन में शिवाय स्वाहा, हे शिवजी आप अग्नि के रूप में मेरा ये मांस को स्वीकार करो। देखते हैं शिवजी प्रसन्न हुए, अभी अभी प्रसन्न नहीं हुआ, ये वाला मांस मांस निकाले, शिवजी प्रसन्न हो जाओ, नहीं हो रहे, फिर काटे, शिवजी प्रसन्न हो जाओ, शिवजी प्रसन्न हो जाओ, पूरा एक एक करके मांस को काट रहे हैं, डाल रहे हैं और शिवजी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे शिवजी प्रसन्न हो जाओ, शिवजी दिखाई नहीं दे रहे। तो अब सोच लिया कि मेरा शरीर का जो भी मांस है सब कुछ खत्म हो चुका है, अब एक ही बचा है ये कोपड़ी, ये सिर, मेरा सिर को मैं काट के अब इसमें डाल देता हूं, अगर शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अपना तलवार निकाला, इसमें दिखाई दे रहा है छोटा तलवार, थोड़ा ये वो होके ठीक से नहीं दिखाई दे रहे, वो अपना तलवार निकाला और सिर के ऊपर रखा, काटने के लिए अभी रेडी हो गया है, शिव जी प्रसन्न होके उनको दर्शन देते हैं, शिव जी को दर्शन देते हैं, शिव जी उनको टच करते हैं, उनको स्पर्श करते हैं, जैसे ही शिव जी स्पर्श कर दिया जो भी मांस सब कुछ जो कट हुआ था, जो काट के ये किया था वो सब ठीक हो जाता है और वो साधारण नॉर्मल हो जाता है। फिर वो शिवजी से प्रार्थना करते, शिवजी मेरा ये मनोवांछा पूरा करो, शिवजी बोलते हैं कोई बात नहीं, जो भी तुम पूछना चाहते हो मैं वैसा ही तुमको वरदान दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ये बताते हैं, हे शिवजी मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत मर जाना चाहिए। शिवजी देखते हैं, अरे ये क्या वर है, हाँ किसी के सिर पर हाथ लगाए और वो मर जाए, मैं तो कह दिया कि जो भी वर मांगते हो मैं तो देने के लिए तैयार हूं। तो शिव जी एक मिनट सोचते हैं, फिर भी बोलते हैं ठीक है, जैसे आप पूछ रहे हो वैसा ही होगा। जैसे शिव जी का वर मांग लिया है, अब इनके दिमाग के अंदर आता है ये वर तो मिल गया है मगर ये काम करता है कि नहीं, इधर उधर देख रहे थे, कोई मिल रहा है क्या, कोई मिल रहा है क्या, यही खड़ा है ना शिव जी, हाँ हम इनके ऊपर ही लगा के देखते हैं, उनके सिर के ऊपर लगाने का प्रयास किया, अरे बाप रे मेरे ऊपर ही आ रहा है, शिव जी भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे और उनके पीछे ये हाँ वृकासुर, इसलिए उसको भस्मासुर भी कहते हैं। जो भागवतम में जैसे दिया गया है हम वैसा ही समझना चाहिए, बीच बीच में डांस गेंस रखने का वो भागवतम में नहीं दिया है, आप देख लीजिए। तो भाग रहे हैं, जैसे ही भाग रहे हैं फिर सब देवता देख रहे हैं, शिवजी देखते हैं देवता के ऊपर, देवता कुछ करेंगे क्या, वो बोलते हैं हे भोलेनाथ तुम ही कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, हमें तो एक मिनट में दूर से ही भस्म कर देगा या हमें मार डालेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, वो शिवजी समझ लिए। तो शिवजी इधर वैकुंठ धाम के साइड में वैकुंठ धाम के दिशा में भागने लगे, फिर भगवान देख लिए, अरे मेरा भक्त। भक्तानाम क्या है, निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतोम यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु। शंभु से वैष्णव बड़ा वैष्णव नहीं है, अरे मेरा भक्त को कुछ कष्ट आ गया है, तो भगवान तुरंत क्या करते हैं, एक छोटा बालक के रूप में वह ब्रह्मचारी के रूप में आ जाते हैं। और जैसे वो भागने लगा तो हे दानव का बहुत बड़ा राजा, हे दानवेश्वर, एक मिनट सुनो। हाँ भाई, हाँ हाँ क्या, देखो आप इतना दूर से लग रहा है बहुत आप टायर्ड हो गई हो, बहुत हाँ आपके ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दूर से आ रहे हो और बहुत टायर्ड हो गई हो, इधर इधर आइए, इधर बैठ जाइए, देखो हमारा कितना अच्छा जगह है, इधर थोड़े देर विश्राम कीजिए फिर आप जा सकते हो। हाँ मुझे तो विश्राम करने का समय तो नहीं है, फिर भी चलो ठीक है आप कह रहे हो। अब ये ब्राह्मण पूछते हैं, हे आप तो इतना बड़ा शक्तिमान असुर हैं, आप इतना क्यों भाग रहे हो, क्या बात क्या है मुझे बता दीजिए, अगर मुझे कुछ समझ में आया तो मैं बताऊंगा आपको, सरल विधि बताऊंगा, आप लग रहे बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो ये पूरा बताता है, ऐसे ऐसे मैं तपस्या किया और शिव जी प्रसन्न हो गए और मैं शिव जी को टेस्ट करना चाहता हूं, अब ये होता है कि नहीं होता है। अरे आप तो धोखा खा लिया है, देखिए आपको दक्ष यज्ञ का समाचार पता है कि नहीं। ते हाँ कभी सुना था दक्ष यज्ञ में कुछ गड़बड़ हुआ था, और हाँ आपको तो कुछ तो पता है ना, दक्ष यज्ञ में क्या हुआ, वो दक्ष शिवजी को शाप दे दिया, और शिवजी दक्ष यज्ञ के बाद जो कुछ भी किया है उनका शक्ति पूरा खत्म हो गया है, ऐसा ही बोलते ही रहता है, जो भी वर मांगे उनको दे देते, वो काम नहीं करता। अरे कोई काम नहीं करता, अच्छा ये वर काम नहीं करता है क्या, काम करता ही नहीं। एक काम करो, आप अपने सिर पर हाथ लगाओ, काम नहीं करता है फिर जाके शिव को ऐसे दंड देना, शिव जी को मार डालना, भागवतम लिखा है, वो कहते हैं शिव जी को मार डालना, ये होने के बाद देखो अपने आप चेक करो, फिर जाके बता देना शिव तुमने क्या वर दिया है और करो। हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं रखता हूं। जैसे वो अपना सिर पर हाथ रखा, एकदम बस उसका मृत्यु हो गई। ये बहुत चतुर बहुत बुद्धिमान बन के भगवान उनको शिव जी को बचाते हैं। तो ये होता है असुर का लक्षण, असुर अपने आप को कैसा भी करके दूसरों को जितना भी नष्ट हो जाए, अपना डोमिनेशन, मैं हूं, मेरा शक्ति इतना है सबके ऊपर, सब मेरे अंडर, मेरे नीचे आना चाहिए, ये असुरों का स्वभाव होता है। हम भी अपने आप को चेक करना चाहिए, क्या मैं किसी के ऊपर डोमिनेट, किसी के ऊपर ये मैं प्रभाव दिखाना चाहता हूं, मैं कितना बड़ा हूं, कितना महात्मा हूं, ये हम अपने आप को चेक करना चाहिए। अगर हमारे अंदर कभी भी ऐसा है तो हम इनका भाई या बहन बन सकते हैं, ये वृकासुर का। तो ऐसा कोई भी असुर आखिर में जितना भी शक्तिमान हो, जितना भी ऐश्वर्यपूर्ण हो, वो एक दिन नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जैसे भगवान एक मिनट में हिरण्यकश्यप को बस खत्म कर दिया। हिरण्यकश्यप इतना शक्तिमान था कि उनको देख के पूरा देवताएं इतना डर जाते थे। और एक बार श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि एक बार वो ढूंढते ढूंढते कौन है विष्णु जो मेरा भाई को वध किया है, हिरण्याक्ष को वध के उसको खत्म कर दूंगा, किधर है किधर है, वो हिरण्यकश्यप ढूंढते ढूंढते वैकुंठ लोग चले जाता है, और वैकुंठ में देखते हैं जैसे वो
विष्णु भगवान ने देखा है, अरे ये आ रहा है, वो क्या करते हैं, उनके नासिक के अंदर सूक्ष्म रूप बन के चले जाते और इधर उधर देख रहा है, किधर है किधर है विष्णु, शायद मैं गलत जगह पर आया हूं, किधर है ढूंढते ढूंढते चले जाता है। तो ये इतना शक्तिमान, इनको टकराने वाला कोई नहीं, ये जो भी टेररिस्ट है वो तो कुछ भी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं इनके शक्ति के समान। ओ ऐसे इतना शक्तिमान होने के बाद भी आखिर में वो खत्म हो गए। तो हम ये श्रीमद् भागवत में जो भी दिया गया उसको हम ठीक ठीक तरह से समझेंगे, ऐसा नहीं कि इसको कुछ कहानी है या इसके ऊपर हम यकीन किया तो किया नहीं तो नहीं, नहीं। हमारे दृष्टि से बहुत सारे चीज एक्चुअली समझ में नहीं आता है। वैसे बहुत सारा संदर्भ श्रीमद् भागवतम में अचिंत्य प्रसंग है, जिसमें एक प्रसंग है अध्याय एक स्कंद नौ में सुदन्यु महाराज श्री रूप मिल जाता है उनको, वो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे फिर बाद में और आगे बढ़ेंगे। ये वयस्क मनु अपना पुत्र के लिए वशिष्ठ मुनि के द्वारा यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और वशिष्ठ मुनि जो भी यज्ञ करते हैं जैसा वो यज्ञ का विधि विधान होता है वैसे सिद्ध हो जाता है। और जब पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे थे, उनके मनु वयस्क मनु के पत्नी, उनके अंदर ये इच्छा आता है कि मुझे तो पुत्री चाहिए। और उनका पतिदेव पूछ रहे हैं वशिष्ठ मुनि के द्वारा यज्ञ करवा रहे हैं पुत्र के लिए। अब ये तो लग रहा है मेरा पुत्री का संभव नहीं है, क्योंकि सब लोग ऐसा कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, जब वो प्रधान पुजारी जो हवन करने वाला उनके साथ जब एकांत में रहा, एक मिनट मिला उनको, जाके हे महात्मा मुझे तो पुत्री का इच्छा है, मुझे कैसा भी पुत्री का वर दीजिए, भगवान से पुत्री को मांगिए। तो इनके मन में अब ये हो गया कि पुत्री के लिए मंत्र पढ़ना है, पुत्री के लिए हवन करना है। हवन करते करते पुत्री का नाम लेते हैं, इनको पुत्री का प्रदान हो जाए और इनको पुत्री मिल गई, पुत्री जन्म हो गई। मगर इनको तो पता नहीं था, राजा को पता नहीं कि उनका पत्नी ने ऐसे पूछा। पत्नी तो बहुत खुश हो गई, बहुत खुशी से मना रही है, मगर राजा कहते हैं ये कैसे हुआ, मैं तो पुत्र के लिए इतना बड़ा वशिष्ठ मुनि को लेके बहुत निष्ठा से हमने पूरा यज्ञ किया है, ये कैसे हुआ। तो वशिष्ठ मुनि को ही बुला के पूछते हैं, हे वशिष्ठ मुनि थोड़ा बता दीजिए, आपका ये कार्य ऐसा कभी नहीं होता है, ये बार ऐसे कैसे हो गया कि पुत्री का जन्म हुआ पुत्र के स्थान में। तो वो पूरा देखते हैं, सब अपना अपना पुजारी सब लोगों से विचार करते हैं, जो मेन पुजारी जो हवन कर रहा था उनसे भी आके पूछते हैं, एक बात बताइए ये कैसे हो गया कि आप पुत्री का जन्म कैसे हुआ। वो पूरा बताते हैं, देखिए महारानी आके हमसे बताए कि पुत्री चाहिए, तो हमारे मन में वही था, हम पुत्री का ही मंत्र पढ़े हैं तो पुत्री बना। तो इनको बताते हैं, देखिए मंत्र जो भी है ऐसे हो गया। तो मनु ऐसा वयस्क मनु कहते हैं, नहीं नहीं आप कुछ भी करो, मुझे तो पुत्र ही चाहिए, हम तो इतना एक्सपेंडिचर इतना खर्च करके इतना बड़ा हवन किया है, सबको ब्राह्मणों को सबको दक्षिणा दिया है, वो कहें आपका मनोवांछा पूर्ण हो जाए। और देखा तो ऐसा हो रहा है, आप कुछ भी करो, अब ये पुत्री को आप पुत्र बना दीजिए। वो कहते हैं, देखो यज्ञ किसके लिए किया है, विष्णु भगवान के लिए, विष्णु भगवान प्रसन्न होके पुत्री दिए हैं, अगर विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं वो पुत्री को पुत्र भी बना सकते हैं, तो हम
विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो वशिष्ठ मुनि विष्णु भगवान को प्रार्थना करते हैं, विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है पुत्री को पुत्र करना है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। तो वो पुत्री को एक मिनट में पुत्र बना देते हैं और इनका नाम रख दिया सुद्युम्नु। जब पुत्री पैदा हुई थी उनका नाम रख दिया था इला। इला ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है हम बाद में देखेंगे। इला तो चले गए, सब लोग देख रहे हैं ये सुद्युम्नु। सुद्युम्नु सुद्युम्न का सब अच्छा संस्कार हो गया, बड़ा हो गया और महाराज भी बन गया और उनका शादी हो गई और उनका जीवन अच्छा चल रहा था, गृहस्थ जीवन बढ़िया चल रहा था। एक बार क्या होता है, वो अपना सैनिक, अपना हॉर्स, घोड़े और सैनिक सब लोग मिलके एक वन के अंदर चलते हैं। उस वन का नाम है सुंदर वन। वो वन में जैसे वो प्रवेश करते ही सब लोग एकदम नारी का बहुत बढ़िया नारी बन गए, सबके सब युवती बन गए, उनका घोड़ा घोड़ी बन गया, जो भी सैनिक थे सैनिक भी स्त्री का वेश, स्त्री का सब कुछ स्त्री बन गए, जस्ट वेश ने पूरा शरीर बदल के स्त्री। अब वो देख रहे हैं, अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। ऐसे इसलिए हुआ था क्योंकि एक बार शिवजी और पार्वती जी अपने एकांत में नृत्य कर रहे थे, एकांत में समय बिता रहे थे, मगर ये ऋषि लोग ढूंढ ढूंढ के शिवजी का दर्शन के लिए आते हैं। तो शिवजी का ये नृत्य वो अपना अकेला एकांत में उनका टाइम देख के शिव सब ऋषि आते हैं, अरे 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 अकेले में एकांत में है, चलो चलो चले जाते हैं, दर्शन भी कर लिया, एकांत का भी भंग हो रहा है, चले जा रहे हैं। तो पार्वती कहती है, हे भोलेनाथ ये हमारे लिए कुछ प्राइवेट गार्डन रहना चाहिए जिसमें जब हम एकांत में टाइम समय को बिता रहे हैं कोई नहीं आना। तो शिव जी कहते हैं, तुम्हारा इतना दासियां हैं वो तो सेवा कर रहे हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दासियां स्त्री रहा तो मुझे कोई नहीं, जो भी पुरुष आते हैं ना मुझे ठीक नहीं लगता, ये कोई ठीक नहीं। अच्छा तो शिव जी सोचते हैं, अच्छा मैं ऐसा व्यवस्था करता हूं जो भी आदमी इस वन में प्रवेश करता है तो वो पुरुष स्त्री बन जाएगा। तो पार्वती देवी कहती, बहुत बढ़िया, आप कोई चिंता की बात नहीं। तो सबको पता है मगर ये सुद्युम्नु बाई चांस उनको ऐसे अंदर आ गया अपने सैनिक सब लोग मिलके और वो सुंदर स्त्री बन गया। बुध जो क्या है, मून, चंद्रमा का बेटा, चंद्रमा का पुत्र बुध। बुध देखता है ऐसे जाते जाते, अरे कितना सुंदर स्त्री है, ये तो मैं इनको शादी करना है, इनसे शादी मैं करना है, जाके पूछते हैं। वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, शादी कर लेते हैं दोनों। दोनों शादी कर लेते हैं और उनका एक पुत्र संतान उत्पन्न होता है कुछ दिन के बाद, कुछ काल के बाद उनका पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम है बहुत प्रसिद्ध, क्या है, पुरंजन, पुरुरव का नामकरण करते हैं, पुरुरव हो गया। जब ये नामकरण हो रहा था इनके दिमाग के अंदर, इला ये जो सुद्युम्नु के दिमाग के अंदर स्लोली बैकफ्लैश, मैं भी पुत्री के रूप में मेरा नाम रखा था इला, हमारे गुरु वशिष्ठ गुरु आए थे और देखा है और मुझे बताती थी, मेरा माँ बताती थी कि तू तो लड़की थी फिर लड़का बन गए, तुम्हारा वशिष्ठ गुरु इतना शक्तिमान है। तो ये पूरा उनको याद आता है, अरे रे 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 मैं तो अब स्त्री के रूप मुझे मिल गया है, मैं तो एक्चुअली सुद्युम्नु राजा था और मेरा गुरु ने मुझे, जब मेरा स्त्री का एक्चुअली स्त्रीलिंग में मैं मेरा उत्पन्न हुआ था, मैं मुझे तो चेंज करके पुरुष बना दिए थे, तो अब मैं स्त्री होके फिर पुरुष बनने का एक ही उपाय है, मैं गुरुदेव को कैसा भी प्रसन्न करके उनके उनको मैं पूजा करके पूछता हूं। तो वशिष्ठ मुनि को बार बार प्रार्थना करते, वशिष्ठ मुनि उनको दर्शन देते हैं। वशिष्ठ मुनि देखते हैं, अरे तुम कौन हो, वो सुदर्शन हो या इला हो? बोलते हैं, देखो मैं ऐसे इस वन में आ गया, आते ही ऐसा स्त्री का रूप मिला है और मेरा शादी हो गया बुद्ध के साथ, बुद्ध राजा के साथ, और मेरा बच्चा हो गया है। अरे अरे, अब बताओ क्या करना चाहते हो, लड़की के रूप में ऐसा ही रहना चाहते हो रानी के रूप में, या राजा के रूप में सुजमनु होके आना चाहते हो? नहीं नहीं, मुझे ना ये स्त्री का जो ठीक नहीं लगता है, मैं तो सुजमनु राजा हूं, मुझे कैसा भी फिर कर दीजिए, सुजमनु बना दीजिए। बोलते हैं, अरे आपको ये लिंग बदल दिया है शिव जी, तो हम शिव जी को ही अप्रोच करना पड़ेगा, शिव जी के प्रार्थना करना पड़ेगा, शिव जी को बहुत वो शीघ्र ही प्रसन्न कर लेते हैं। शिव जी कहते हैं, देखो मैं तो पार्वती को वचन दिया था कि जो भी इस वन के अंदर आते हैं वो स्त्री बन जाएगा, अब आप कह रहे हो कि ये स्त्री को पुरुष बनाओ, अब मैं स्त्री ये स्त्री को पुरुष बना दिया, पार्वती जी बहुत नाराज हो जाएंगे, मैं मेरा पत्नी को तो नाराज करना नहीं चाहता हूं, और आप इतना बहुत बड़ा श्रेष्ठ मुनि हैं, आचार्य हैं, तो आपके वचन को भी मैं इनकार नहीं कर सकता, अब मैं क्या करना है बताओ। तो वो सोचते हैं, सोच सोच के अब अपना डिक्लेरेशन देते हैं, ठीक है एक महीने पुरुष एक महीने स्त्री। बोलते हैं, एक महीने पुरुष एक महीने स्त्री, ठीक है एक महीने तो राजा बन के रहेगा और एक महीने रानी बन के उधर जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ तो हो रहा है। तो आगे बताते हैं, अच्छा तुम अब से हो जाओ पुरुष हो गए हो, बस देखते ही वो राजा बन गए, सब लोग आए राजा के सिंहासन में बिठा दिए, और वो ऐसा ही एक महीने पुरुष एक महीने स्त्री, राजा बन के एक महीने जब पुरुष हो गया है, उनका भी तीन पुत्र हो गए हैं, उनका नाम ऐसा है, नाम दिया है ना, उत्कल गया और विमल। तो इधर राजा बन के पुरुष बन के राजा का तीन उनका संतान, और वो संतान ऐसा ही आगे बढ़ता है, भागवतम में दिया है उनका पुत्र, उनका पुत्र क्या है, और इधर पुरुरव, इधर रानी बन के पुरुरव के मां है। ये ऐसे जो है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है हमको समझना। अगर कोई लिंग बदल दिया, ऐसा नहीं कि अभी लिंग बदल दिया कुछ संतान उत्पत्ति नहीं, नहीं, पुरुष बन के अपना तीन बच्चे, स्त्री बन के अपना बढ़िया सा प्यारा पुरुरव। तो अगर हम इसको डीपली देखते हैं, अगर गहराई से हम सोचते हैं, ये भगवान का लीलाएं ऐसा है, इसको हम भगवान का बहुत अचिंत्य लीला प्रसंग बोल के ही हम देखना है। अगर हम विमर्श करते हैं या हम ग्रंथों को, इस महान ग्रंथों को अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमें भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल हो जाता है, भक्ति से स्लोली स्लोली हम पीछे हट जाएंगे। तो इस जगत में एक्चुअली दो तरीका के लोग हैं, एक मक्खी का दूसरा मधुमक्खी का। प्रभुपाद जी बार बार इसका उदाहरण देते हैं, ये मक्खी जो है जितना भी अच्छी चीज हो वो छोड़ देता है और जाके सड़ा हुआ चीजों को पास ही जाके उसको अच्छा लगता है, ये स्वाद है, ये कितना सड़ा हुआ है, कितना, जो बच्चा उधर खड़ा है वो कहता है कितना दुर्गंध आ रहा है, और मधुमक्खी कितना भी कष्ट हो दूर दूर जाके सुगंध को ही देखता है, सुगंध को ये इसको ही लेता है, मधु को ही वो लेता है। तो हम किसी के अंदर अच्छा गुण रहा तो भी अगर हमारे अंदर ये मक्खी के जैसे गुण रहा
तो उनके अंदर जितना भी अच्छा हो हम ढूंढ ढूंढ के उनका जो भी गलतियां हैं उसको पकड़ते हैं। तो ये हमारे अंदर ऐसे गुण बुद्धि से ये मन को कंट्रोल करके मन तुम उनका गलतियों को पकड़ रहे हो, उनका जो अच्छा गुण नहीं देख रहे हो। तुम मक्खी के जैसे हो, मक्खी के जैसे नहीं मधुमक्खी के जैसे गुण को तुम लो। उनके अंदर जितना भी खराब चीज हो वो ढूंढ ढूंढ के अच्छा ही बहुत अच्छा स्वाद को लेके वो उसको मिल जाता है और वो मधु को लेता है। तो गुण संगति से ही प्राप्त होता है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। ये एक बार नारद मुनि के पास, नारद मुनि ये दुष्ट राजा के पास आते हैं। वो कभी भी शराब पीता है, वो कहते हैं साधु संग करो ये क्या कह रहे हो, साधु संग से क्या लाभ होता है। अपना शराब का पात्र को भी नारद मुनि के ऊपर गिराया। नारद मुनि कहते हैं देखो तुम एक दिन तुम्हें यमदूत आके खींच के ले जाएंगे और यमराज से यही पूछना कि एक मिनट साधु संघ से क्या लाभ होता है उनसे पूछना, याद रखो। हाँ हाँ याद रहेगा याद रहेगा। तो जैसे ही उसका मृत्यु आ गया उसको खींच खींच के ले जाते हैं और उसको दंड देने के लिए रेडी हो जाते हैं। यमदूत देखते हैं इसका, अरे बाप रे कितने कितना पाप किए हो, ये तो चिटक खत्म ही नहीं होता, कितना बड़ा लंबा लिस्ट है तुम्हारा, और एक बार तुमने नारद मुनि को भी अपमानित किया हो। जैसे उन्होंने कहा एक बार तुमने नारद मुनि को अपमानित किया हो, तो कहते हैं अरे मुझे मेरा प्रश्न, एक प्रश्न है, तुम्हें ना कुंभी पाकम ये जो नरक है इसमें हजार हजारों साल तुमको हाँ ऐसे बॉइल करेंगे, तुमको इतना कष्ट होगा, तुम इतना पाप के, मेरा एक प्रश्न तुम्हें ना नरक जाके कल्पांतर युगांतर भेज, मेरा एक प्रश्न दस बार पत्र हाँ जाओ बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है। अच्छा लव मत साधु संग से क्या फल मिलता है यमराज, थोड़ा सा मुझे बता सकते हो। यमराज देखते हैं लव मत साधु संग से क्या फल मिलता है मुझे तो पता नहीं। तो वो सोचते हैं सोच सोच के फिर ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं। ये जीव आया है बहुत बहुत पाप किया है, वो पूछ रहा है लव मत साधु संग से क्या फल मिलता है, हे भगवान थोड़ा बता दीजिए। तो ये भी बोलते हैं मुझे तो पता नहीं। शिव जी के पास ले जाते हैं, हे भोलेनाथ थोड़ा बताओ इनको, ये जीव को मैं लेके आया हूं, ये कहता है कि लव मत साधु संग से क्या लाभ है। शिव जी कहते हैं आई एम सॉरी मुझे भी पता नहीं। तो मगर मुस्कुरा रहे थे, उनको पता है क्या होने वाला है। तो वो देखते हैं अब कौन बचा है, वैकुंठ लोक को ले जाते हैं। अब ये उल्टे सीधे बहुत सारा प्रश्न कर रहा है, ये जीव को भी मैं लेके चलता हूं, नहीं तो और कुछ प्रश्न पूछा तो मैं क्या जवाब दूं। भगवान के पास ले जाते हैं, हे भगवान ये जीव इतना पाप किया है, इसका चिट्ठा तो इतना लंबा है और वो ये एक प्रश्न पूछ रहा है लव मत साधु संग से क्या लाभ मिलता है, क्या लाभ मिलता है। वो जीव को लेके आए है ना, हाँ हाँ किधर लेके आए हो, हाँ आपके धाम में वैकुंठ धाम में, मतलब क्या हुआ, समझा कि नहीं समझा, आ जाओ। ए जीव चले गया। अरे भगवान मुझे तो अब समझ में आया लव मत साधु संग से क्या लाभ मिलता है, हाँ हाँ आप काली हाथ जाओ तो भगवान के धाम भी मिल सकता है, मिलेगा। तो लव मत साधु संग, साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मत साधु संग सर्व सिद्धि। तो इसलिए हम साधु संग को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मंदिर में आइए साधुओं से, ये घास का टुकड़ा, एक घास का टुकड़ा जाके गटर में गिरा, एक घास का टुकड़ा जाके फूलों की टोकरी में गिरा, कुछ देर के बाद एक लड़की आई घास को उठाई कितना खुशबू है, दूसरे में भी वो लड़की आई जैसे घास को निकाला तो वो उल्टी करने लगी, इतना बदबू, अरे किधर से आ गई इतना बदबू। घास को अंदर तो कोई बदबू नहीं था ना कोई सुगंध था, मगर जैसे ही वो संग किया है उसका संग का प्रभाव से वो दुर्गुण या सुगुण उसके अंदर आ जाता है। हम भी अगर साधु लोगों से इस्कॉन मंदिर में आते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, हमें समझ में आता है कि ये जो चक्र है ये चक्र चल रहा है जन्म मृत्यु चक्र, इससे बाहर आना ही हमारा मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है,
इसके लिए हम क्या क्या करना चाहिए हम देख सकते हैं। नहीं तो पैसे के पीछे पड़ा, पैसे के पीछे पड़ा, मरने के बाद भी पैसे के पीछे पड़ते जाएगा और कोई अंत होने वाला नहीं है। तो इसलिए भगवान बताते हैं, मैं सब जीवों को चला रहा हूं और उनकी शरण में जाओ, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उसके बाद ही तत्प्रसादात परम शांतिम, उसके बाद ही शांति मिलेगा। अगर आप शांति के लिए सुख के लिए भाग रहे हो, उनके शरण में जाओ जो तुम्हें चला रहे। और 63 में भगवान बता रहे हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, मैं बहुत गुह्य ज्ञान तुम्हें बताया हूं और इसके ऊपर विमर्श करो, ये थे इच्छेसी तथा करो, फिर इसके बाद तुम्हारा मर्जी, तुमको मैं स्वतंत्रता दे रहा हूं, तुम जैसे चाहिए वैसे करो, मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। अगर तुम कुत्ता बन गए हो, कुत्ता का भी मैं खाना सब कुछ आहार देता हूं, उसके लिए घर कुत्ते का घर सब कुछ मैं उसके कर्म के अनुसार देता हूं, मेरे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। मगर देखो पुत्र, देखो बेटा, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तुम इतना कष्ट भोग रहे हो। नहीं तो एक गधा, गधा का बच्चा, छोटा बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया गधा का भी परिवार, गधा बूढ़ा हो गया, गधा मर गया, छोटा बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया और किसी लड़की से शादी हो गई, अपना परिवार हो गया और उनका भी बच्चा हो गए और वो भी बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होके वो मर गया। मनुष्य के जीवन में और गधे के जीवन में अंतर क्या हुआ? अगर हम भगवान के बारे में सीरियसली गंभीरता से नहीं सोचते हैं और गंभीरता से हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जपते हैं तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं, हम यही चक्कर में रहेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम में हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है और इसको कैसे प्राप्त करना है पूरा का पूरा बताया है, और इसके ऊपर भागवतम के ऊपर पूरा विश्वास रख के हम भगवान का और भगवान के भक्तों का आदेशों को पालन करना चाहिए, जो शुरू होता है हरे कृष्ण महामंत्र को कीर्तन करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय तो हो चुका है, अगर किसी का प्रश्न रहा तो बात कर सकते हैं, तो किसी का प्रश्न नहीं है तो हम समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।